पंचदशी के कुटस्थ दीप प्रकरण का 40वां श्लोक है ना, पहले उच्चारण कर लो। अविनाशयम् आत्मेति कूटस्थ प्रविवेचितः मात्रा संसर्ग इत्येवम् असंगत्वस्य कीर्तनात्। अविनाशयम् आत्मेति कूटस्थ प्रविवेचितः मात्रा संसर्ग इत्येवम् असंगत्वस्य कीर्तनात्। तो यहां पूर्व पक्ष के शंकात्मक श्लोक है। पहले आपने श्रवण किया था कि औपाधिक जीव का नाश होता है, सुना ना पहले आपने। तो यहां पूर्व पक्ष शंका करता है कि भाई हमने सुना है कि जीव का नाश होता है नहीं, फिर आपने कैसे कह दिया कि औपाधिक जीवात्मा का नाश होता है, तो ये विरोधी बातें हैं। यही बात यहां बता रहा हूं। देखिए, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, यह आत्मा कैसी अविनाशी है, अनुच्छित्ती धर्मा, इसका उच्छेद नाश कभी हो नहीं सकता, अनुच्छित्ती धर्मा है। इति श्रुत्या, ऐसी श्रुति से, कुटस्थ ततो भिन्न प्रदर्शित इत्याह, वह जो कुटस्थ है उससे भिन्न रूप से विभिन्न प्रकार से बताया गया है। और आपने पहले क्या कहा था कि औपाधिक जीवात्मा का नाश होता है, तो आपके बाद से श्रुति वाक्य का विरोध हो रहा, तब यहां बताएंगे विरोध नहीं है। कुटस्थ का आत्मा का तो नाश नहीं होता, वह तो ब्रह्म स्वरूप है, परंतु जो औपाधिक चिदाभास है, जीवात्मा है, उस उपाधि के नाश से उसका नाश माना गया है, यह बात बताएंगे। और बताएंगे आपको कि जब देहांतर संक्रमण होता है उस समय श्रुति एक मिलती है कि जीवापेतम किल नश्यति शरीर न तु जीवम। जीव अपेत बोलते छोड़कर, जीव को छोड़कर शरीर का नाश होता है, जीवात्मा का नाश नहीं होता। अपेत, उपेत का अर्थ है युक्त, साथ है, और अपेत का अर्थ है छोड़ना। हाँ, तो जीवापेतम, जीव को छोड़कर शरीर का नाश होता है, जीव का नाश नहीं होता। तो यहां पर जो जीवापेतम कहा है ना, जीव को छोड़कर, तो जीव मोक्ष पर्यंत स्थायी है, जब तक मोक्ष नहीं तब तक जीवात्मा स्थायी है। देहांतर गमन के समय इस औपाधिक जीवात्मा का विनाश नहीं होता। औपाधिक जीवात्मा का केवल तत्व ज्ञान से ही बाद होता है, बिना तत्व ज्ञान के बाद नहीं होता। जो औपाधिक जीव है वह जन्म जन्मांतर शरीरांतर के साथ अनुसंचरण करता है, यह शरीर छूट जाएगा नया शरीर मिलेगा, उस समय जीवात्मा साथ जाता है। हाँ, तत्व ज्ञान से इस जीवात्मा का बाद हो जाएगा। बाद मतलब होता है कि जो लक्ष्यार्थ है वह ब्रह्म रूप है, जो उपाधि है उपाधि का विलय हो जाएगा। जैसे घड़ा फूटा तो उपाधि नष्ट हो गई और घटाकाश आकाश रूप में विलय हो गया। एक लोटा जल है, लोटे के परिधि में है, उसकी सीमा है। उस लोटे के जल में, बाल्टी के जल में नौका नहीं चल सकती, मछलियां नहीं तैर सकती। है तो वह गंगा जल ही, गंगा ही है, बाल्टी का जल गंगा ही है। जैसे बाल्टी का जल गंगा मिला, अब गंगा रूप हो गया, उपाधि आपकी हट गई। ऐसे ही तत्व ज्ञान से औपाधि का विलय होने से तद रूपता को प्राप्त हो जाता है, वही बता रहे यहां। अविनाशी अयम आत्मेति, यात्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, कुटस्थ है, ऐसा प्रविवेचित मतलब विवेचन किया गया है, व्याख्या यह की गई है। मात्रा संसर्ग, मात्रा करते देहादि शरीर आदि इंद्रियां है ना, इनके द्वारा कोई संसर्ग नहीं। जिस प्रकार से 10 घड़े हैं, एक घड़े में हमने रखा है मिट्टी का तेल, एक में घृत, एक में समझो तेल, एक में गाय के गोबर, एक में मिट्टी। जो घड़े हैं उस घड़े में जो स्पेच है, स्पेच मतलब आकाश, स्पेच को खाली को आकाश बोलते हैं। यदि स्पेच न हो मतलब स्थान न हो तो उसमें न मिट्टी आएगी, न दूध आएगा, न घी आएगा, न कुछ भी नहीं आएगा। परंतु वह जो घड़ा है ना, घड़ा उन वस्तुओं के गुण दोष से प्रभावित होता है, पर घटाकाश नहीं होता। घटाकाश न हो तो उसमें दूध भी नहीं आ सकता है, घी भी नहीं। आकाश मतलब स्पेच आवश्यक है, खालीपन आवश्यक है। तो देखो घटाकाश में दूध है, घृत है, मक्खन है, गाय का गोबर है, मिट्टी का तेल है, किरासन तेल है, पेट्रोल है, सब रखा हुआ। तो घटाकाश इन वस्तुओं का आधार तो है, आधार होने पर भी उनसे असंसर्ग है, असंग है। अब उन घड़ों से मिट्टी निकाल दो, घी निकाल दो, मक्खन निकाल दो, तेल निकाल दो, गोबर निकाल दिया तो खाली हो गया। खाली होने पर भी घड़े में थोड़ी उसका स्मेल आता है, खुशबू बदबू आती, किंतु घटा का असंग है। ऐसे ही सब कुछ उस कुटस्थ पर, अधिष्ठान चेतन पर कल्पित है, पर वह घटाकाश के समान असंग है। जो घड़ा है उस घड़े में चिकनाहट भी आ जाएगी, घी की, जल की ठंडाई आ जाएगी, शीतलता, मिट्टी का रुक्षपना, मालिन्य मलिनता आएगी, दुग्ध का सरसता आएगी। परंतु जो आकाश है ना, उस घटाकाश में जो आकाश है, आकाश में न कोई चिकनाहट है, न जो है रुक्षपना है, न ठंडीपना। ऐसे ही आपका कुटस्थ है, साक्षी है, चेतन है, सब कुछ इसमें है, पर असंग है। चाहे उसमें आप घी रखो, चाहे दूध रखो, चाहे जल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हां उपाधि जरूर उपधेय गुण से प्रभावित होता है, जो उपाधि है ना उपधेय गुण से प्रभावित होगा। ऐसे देखो हमारी शरीर, ये शरीर हमारा उपाधि है, मन बुद्धि ये सब उपाधि है। तो शरीर मन बुद्धि उपाधि में घृत के समान शुद्ध ज्ञान भक्ति उपासना विवेक सत्कर्म यह सब उपाधि में रहेगा तो आपको मन में शीतलता शांति अमन चैन रहेगी, आनंद का अनुभव होगा। और यदि जैसे हमने घटाकाश में रख दिया धूल मिट्टी, पेट्रोल रख दिया, डीजल रख दिया, तो उसमें थोड़ी सी उपाधि में मलिनता आती है, रुक्षपन आता है, गंदगी आ जाती है। ऐसे हमारे उपाधि में शरीर आदि उपाधि, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि उपाधि है, इन उपाधियों से यदि आप सत्कर्म नहीं करेंगे, जब तब अनुष्ठान भजन चिंतन नहीं होगा, और इन उपाधियों में ये संसार के जो विषय वासना है ना, ये दुनिया के जो विषय वासना, विषय वासना मतलब आंख से हमेशा रूप कोई देखते रहना, रूप देखना बुरा नहीं, पर रूप के अधिष्ठान तक जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, आंख से रूप को तो देखते हैं, श्रुति में कहा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवः, प्रत्येक रूप में वही चैतन्य क्या है, अनुवृत्त है, व्याप्त है, अनुस्यूत है। अनुस्यूत मतलब व्याप्त है, जितना रूप देख रहे उस प्रत्येक रूप का अधिष्ठान वह चैतन्य है। ऐसे कान से शब्द सुन रहे, अधिष्ठान चैतन्य हो तो न शब्द सुनाई देगा, न जो है आप कुछ देख सकते, न चल सकते, न सूंघ सकते। तो हमारी इंद्रियां केवल बाहरी ढांचे को ही ग्रहण करती हैं। यदि विवेक होगा, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, अभी ना समझ है, नादान है, तो माता पिता समझाते हैं, तुम्हें भविष्य की बात पता नहीं, भविष्य में ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समझदार होने के बाद उसे भी भविष्य की बात धीरे धीरे ज्ञात हो जाता है, पर बड़े को मालूम है कि भाई समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो केवल प्रातिभासिक खेलने कूदने में आनंद है, तात्कालिक है, क्षणिक है, समय की बर्बादी है। तो ऐसे जो हमारी ये जो इंद्रियां है, मन बुद्धि है, इसमें विवेक नहीं, सत्संग नहीं, सद्विचार नहीं, स्वाध्याय नहीं, तो हमारी ये इंद्रियां केवल बाहरी विषय को ही ग्रहण करती हैं, रूप रस गंध स्पर्श, जिसका असली अधिष्ठान है। जैसे कि मछलियों को पता नहीं कि ये आटे के अंदर कांटा छुपा है, पर मछुआरे को तो पता है ना, और मछलियों में समझदार मछली जिसने धोखा खाया है वो सावधान करती, उधर नहीं जाना, वो देखने में तो बढ़िया बढ़िया कोमल मीठा आटा है, स्पर्श बढ़िया स्वाद उसका मिठास, उसके अंदर क्या छुपा है, कांटा। ऐसे हमारी इंद्रियां विवेक होगा तो रूप के अधिष्ठान तक जाती है, तो प्रत्येक रूप रस गंध स्पर्श में जो अनुस्यूत आत्मा है, अधिष्ठान चैतन्य है, यदि वहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो फिर रूप प्रसादि का बाध हो जाता है, प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो अब दशहरा विजयादशमी गई, दीपावली आने वाला, तो कई बार बड़े बूढ़े सत्संगी समझदार भी न चाह करके भी बहु बेटे नाती पोते के मन को रखने के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए आप उसको ले आते मेला दिखाने, नाच दिखाने ले आते ना, घुमाए ले आते, आपको पक्का पता है कुछ नहीं बेकार है सब, आपको ठीक से पता है, ज्ञान है, पर क्या करें जी, अभी बच्चे हैं, ये ना समझ हैं, तो वे तो मेला में देख करके उस बनावटी ढांचे को बड़े खुश होते हैं, और आपको कोई खुशी नहीं होती क्योंकि आपको पक्का पता है सब कुछ नहीं। पर कई बार आपको न चाह करके भी, जानबूझ करके भी, नाती पोते बच्चे बेटे की खुशामदी के लिए आप साथ साथ जाते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं, देखो ऐसा है वैसा है, होता है कि ऐसी विवेक होने के बाद व्यवहार तो होगा, पर आपके व्यवहार में अधिष्ठान चैतन्य का गंध होगा, विषय वासना गंध नहीं होगा, इतना ही अंतर है, वही बता रहे हैं आप। कि मात्रा संसर्ग इसका विशेष कोई भी संसर्ग नहीं है। इसलिए असंगत्वम आत्मा कैसी असंग है, आत्मा में बिल्कुल किसी से आत्मा संग करती नहीं, आत्मा संग नहीं करती। पर संग कौन करता, आसक्ति, संग मतलब आसक्ति। ये जो संग है ना चिदाभास करता है, जो चिदाभास है वही संग करता है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि जो जड़ है, स्वतः इसमें स्फूर्ति स्पंदन क्रिया चेष्टा हो नहीं सकता। और आत्मा भी चेतन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, निष्क्रिय है, निष्कल है, साक्षी चेतन है, उसमें भी हलचल होना संभव नहीं। तो आप आत्मरूप हैं, असंग है, निष्क्रिय है, निष्कल है, साक्षी है, चेतन है, उसमें कोई हलचल संभव नहीं। कर्तापना भोक्तापना संभव नहीं, शरीर इंद्रियादि जड़ है इसमें भी संभव नहीं। पर जब दोनों का अध्यास होता है ना, उस दोनों के अध्यास में जिसको चिदाभास कहते, सारा ये कर्तापना भोक्तापना सुखीपना दुखीपना रोना धोना हंसना खाना पीना उसमें लगाए सब। तो आपको केवल अध्यास को मिटाना, बस इतना ही करना, जो अध्यास है ना, या जो जन्म जन्म का आत्मा अनात्मा का आध्यासिक संबंध है, काल्पनिक संबंध है, उस अध्यास को ही विवेक से दूर करना है कि भाई मैं तो आत्मा हूं। यह जो हलचल है क्रिया है यह तो केवल मात्र अध्यास में हो रहा है, मैं इनसे अतीत हूं, इस प्रकार से अपने को समझना है। वही करे मात्रा असंसर्ग, देन्द्रियों से बिल्कुल इसका कोई संबंध नहीं है। इत्येवम् असंगत्व से कीर्तनात, आत्मा की असंगता का कथन किया गया है। अविनाशी ये प्रतीक है मूल का, मात्रा असंसर्गत्वस्य भवति, विषयों से बिल्कुल क्या है असंग है, मात्रा असंग त्वस्य भवति असंग है। इति श्रुत्या ऐसी मात्रा बोलते हैं विषय, मियन देखो मात्रा का दोनों अर्थ है, विषय भी करण भी। भाव व्युत्पत्ति करेंगे तो विषय अर्थ होगा शरीर, और करण व्युत्पत्ति करेंगे तो इंद्रियां अर्थ हो जाएगा। मियन्ते इति मात्रा, हाँ, इसके मात्रा शब्द क्या है, मांग माने धातु से बना मात्रा, तरल प्रत्यय होकर, तो इसका अर्थ करेंगे हम कि मात्रा वाला मियन्ते ज्ञायन्ते अनेन, ऐसा अर्थ करेंगे ना अनेन करण व्युत्पत्ति, तो अर्थ हो जाएगा इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ ज्ञान होता है, आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान। तो मियन्ते ज्ञायन्ते अनेन अर्थ करेंगे तो इंद्रिया अर्थ हो जाएगा, और खाली अर्थ करेंगे मियन्ते इति मात्रा भाव व्युत्पत्ति, करणी भाव व्युत्पत्ति बोलते हैं इसको, तो मियते इति अर्थ हो जाएगा विषय रूप रस शरीर आदि अर्थ हो जाएगा, शब्द वही है जैसी व्युत्पत्ति करे वैसा अर्थ निकलेगा। तो कहते हैं कि यह जो मियंती थी मात्रा देहादय, तो कुछ लिखा साफ साफ ये भाव व्युत्पत्ति किया है, मियंते मतलब ज्ञायन्ते जो जाने जाते हैं, जो परिच्छिन्न होते हैं। क्या बोला आपने सरस्वती माता, अवे परिच्छिन्न, वही अर्थ है। तो ये विषय सब परिच्छिन्न है, शरीर इंद्रिया सब परिच्छिन्न है, हाँ शरीर मात्र परिच्छिन्न है उस अर्थ में। तो मात्रा मतलब देहादय, ये जो इंद्रियां है ये सब परिच्छिन्न है, इतनी मात्रा में परिमाण में। अब मनुष्य का शरीर है, इसको आप देवता का नहीं बोल सकते, ये पशु का शरीर है, ये दैत्य का नहीं, एक सीमित हो गया ना, वो मात्रा हो गई, इतने एक वस्तु का परिच्छेद हो गया, एक काल का परिच्छेद हो गया, आज है कल नहीं होगा, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। श्री मात्रा कहते हैं मतलब ससीम परिच्छिन्न वस्तु को मात्रा सबसे यहां पर कहा गया है। देहादय ताभि अस्य आत्मनो असंसर्गो भवति इत्यर्थ, इनसे कोई इसका संबंध नहीं। यह जो हम लोग संबंध बना लेते ना, यही तो हमारे सुख दुख का कारण है। आत्मा तो बिल्कुल सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, दुख का नामो निशान नहीं। परंतु हमने इस संसार के पदार्थों से, शरीर से अपने संबंध को जोड़ लिया कि यह मेरा शरीर, यह मेरा मकान। व्यवहारिक माने तब तो कोई क्षति नहीं, पर मनुष्य का स्वभाव होता है हमेशा छलांग लगाने का, छलांग लगाता है। व्यवहारिक न माने को उसको पारमार्थिक मान लेता, बस हमेशा रहेगा हमारा शरीर हमारे साथ, ये मित्र बंधु बांधव कुटुंब परिवार हमेशा हमारे साथ रहेंगे, है ना, जी हजूरी करेंगे, हाँ जी हाँ जी। वो तो पति तक हाँ जी करता जब तक उसके पंख नहीं आए, पंख आने के बाद वो पर मारने लग जाता आकाश में। फिर आप क्या बोलते कि दुनिया बहुत बदल गई, कलयुग आ गया, कलयुग नहीं आ गया, वो तो पहले से वैसे ही। देखो सूर्य नहीं बदला, सूर्य वैसे ही, चंद्रमा वैसे ही, सब वैसे ही। पर हम क्या बोलते हैं दुनिया बदल गई, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे प्रतिकूल उसने व्यवहार किया। इस संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है, स्थायी केवल कुटस्थ एक आत्मा ही है। यदि आपको परिवर्तन बदलाव नहीं चाहिए, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी बात वहां से मुख मोड़ लेने का। भाई मुंबई के बाजार में सारी चीजें रखी हैं, हजारों वस्तु है, जो आवश्यकता उसी को आप लेते हैं ना। ऐसे आपको बदलाव, चेंजिंग, परिवर्तन बिल्कुल पसंद नहीं, उसको छोड़ देना, कुटस्थ आत्मा को पकड़ना। और कुटस्थ आत्मा मुंबई के बाजार में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, केवल प्रेमपुरी मिलेगा बस, है ना। प्रेमपुरी में हजारों वर्षों से, सदियों चल रहा, ऐसा नहीं आज ही प्रेमपुरी था, इसके पहले भी रहा होगा। एक वेद वाक्य आप लोग सुनते हैं बार बार, यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, यथा धाता पूर्वम अकल्पयत। यह सृष्टि पूर्व मतलब पहले जैसे थी वैसे आज भी है। ये सृष्टि जो है ना, पहले भी सूर्य चंद्रमा सागर समुद्र ये सब था, वैसे आज भी है, परमात्मा ने कल्पना किया। होता क्या है कि हमारे दृष्टि के सामने जब कोई बात आती तो क्या बोलते, ये नई चीज है आपके लिए नई, पर दूसरे के लिए तो पुरानी है ना, पुरानी चीज है। वैसे ही ये संसार अनादि और अनंत है। इस संसार का अंत केवल मात्र आत्मज्ञान से होता है। अंत मतलब बाद हो जाएगा, जैसे कि आकाश में जो है ना बादल मेघ, आकाश में जो मेघ बादल है वह अनादि है, और वर्षा के बाद अंत हो जाता है। ऐसे संसार अनादि तो है पर अज्ञानी के लिए अनंत है, पर ज्ञानी के लिए अंतवान है, तत्व ज्ञान से अंत हो जाता है। ब्रह्म तो अनादि अनंत है, पर सृष्टि अनादि है पर शांत है, तत्व ज्ञान से इसका अंत होता है। ये अनंत नहीं, अनंत है ज्ञानी की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से ये शांत है, अंत होता है। वही बता रहे यह जो मात्रा देहादय है ताभि अस्य आत्मनो असंसर्ग भवति, संसर्ग नहीं होता है। ननु जीवा पेतं वाव किल इदं म्रियते न जीव म्रियते, जीवापेतम, जीव से रहित, जीव को छोड़कर वाव मतलब प्रसिद्ध है। ये किल सद वाक्य के शोभा के लिए है। इदम मतलब शरीरम मृियते मरता है, न जीवो मृियते, जीव का नाश नहीं होता है। तो जीव का नाश नहीं होता का मतलब है कि जन्म जन्मांतर में जीवात्मा आपका संचरण का हेतु बनता है। जन्म जन्मांतर में ये जीवात्मा रहेगा। तत्व ज्ञान पर्यंत चिदाभास जीवात्मा स्थायी है, पक्का। आपका पुरियष्टक, ये जो पुरियष्टक है ना, ये स्थायी रहता है। पुरियष्टक मतलब कि ये पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब स्थायी रहते। तत्व ज्ञान के बाद इन सब का बाद हो जाएगा, अपने कारण में कार्य का विलय हो जाएगा। आप का चिदाभास चित्त में प्रतिष्ठित हो जाएगा, और जो इंद्रियां हैं ना, इनका कारण जो आपका पंचभूत है, सूक्ष्म जगत में विलय हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था है, कोई बता रहे हैं कि जीवा पेतम वाव किल इदम मृियते, न जीवो मृियते, जीव नहीं मरता है। इति श्रुत्या, श्रुति से अस्य है वाव अर्थ निश्चित अर्थ में, वाव वैदिक शब्द है, निश्चित अर्थ में है। एक कील आपका है मतलब प्राचीनता को बतलाने के लिए, बहुत प्राचीन प्रसिद्ध बात है। हाँ, जीव को छोड़कर शरीर का नाश होता है। इदम मृियते, न जीव मृियते, जीव नहीं मरता है। इति श्रुत्या, ऐसी श्रुति है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति, छठवें अध्याय के है ना, ग्रहमा आपका आपका क्या है, पाठ है। ब्राह्मण ही ब्राह्मण तो वेदांतक में है, पाठ है। हाँ, और तीसरा आपका मंत्र है, इति श्रुत्या, अध्याय होता है इसमें। श्रुत्या अस्य औपाधिक अविनाशित्वं प्रतिपाद्यते, इस औपाधिक जीवात्मा का भी अविनाशीपना का प्रतिपादन किया गया है। देखो, पहले बोला था औपाधिक जीवात्मा का नाश होता है, यहां पर उसको नित्य बतलाया है, तो दोनों का विरोध हो गया, विरोध हो गया दोनों का। हाँ, जी मरता नहीं, वहां बोला जी मर जाता है उपाधिक जी, तो चीज वही है, अपने अपने दृष्टि है। हाँ, तो जो चिदाभास है ना, चिदाभास में आभास के नाश से नाश मान लिया था किसने, आभासवाद के दृष्टि से। हाँ, प्रतिबिंबवाद वाले बोलेंगे नहीं, जीव का नाश नहीं होता, बोले जीव तो ब्रह्म रूप ही है। जैसे कि हजार घड़ों में दिखाई पड़ने वाला चंद्रमा उस आकाश के चंद्रमा से अलग नहीं है, उपाधि मन ले कि उस घड़े का नाश हुआ, जल बह गया, जल सूख गया, तो घटस्थ चंद्रमा अपने बिंब में चला जाएगा। बिंब रूप तो पहले से था, भाषित नहीं होगा। तो आभासवाद वाले बोलेंगे भाई, घड़े के फूटने से जल के नाश होने थे, उस घटस्थ चंद्रमा का नाश हो गया। ये कथन आभासवाद का है, पंदसीकार का, वार्तिककार का। और प्रकाशात्म्यति विवरणकार मानेंगे कि भाई नाश नहीं होता, वो दोनों तो एक ही थे, खाली उपाधि का नाश हुआ। हाँ, घट उपाधि, जल उपाधि का नाश हुआ, चंद्रमा दोनों एक ही थे, द्वैत की प्रतीति ही ये भ्रांति थी, भ्रांति का नाश हुआ, इतना ही कहते हैं। चंद्रमा का नाश नहीं हुआ, चंद्रमा सत्य है। मतलब कि जो इससे ऐसा लगता है, या आचार्य, आचार्य मतलब शंकराचार्य भगवान का मत भी प्रतिमवादी है, क्योंकि बोलते हैं ना जीव ब्रह्म ही बना पर जीव ब्रह्म ही है। तो घड़े में चंद्रमा जो भाषित हो रहा वो आकाश के चंद्रमा से अलग नहीं, वही चंद्रमा है, दोनों एक ही है। द्वैत की जो प्रतीति है ना वह भ्रांति है। उस भ्रांति को निवृत्त करना है कि भाई दोनों एक ही है। उस चंद्रमा में हलचल होने से यहां हलचल होता है, ये मानेंगे कौन? प्रतिबिंबवाद वाले। इनका कहना दोनों एक है और दोनों सत्य है। द्वैत की प्रतीति भ्रांति है। हाँ, एक पर दो भाषित हो रहा, चार भाषित हो रहा, हजार भाषित हो रहा। चंद्रमा तो एक है परंतु उपाधि से उसमें हजार पना दिखाई पड़ रहा, हजार घड़े में हजार चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो ये बोलेंगे प्रतिबिंबवाद वाले कि भाई ये चंद्रमा एक है, ये द्वैत की प्रतीति ही मिथ्या है। आभासवाद बोलेंगे नहीं, सब अलग अलग है और सब मिथ्या है, झूठा है। मूल जो चंद्रमा आकाश वाला ही सत्य है। बात तो वही है, अपने समझने समझाने की शैली अलग अलग है, दोनों में बात वही है। तो वही शंका कर रहे कि जीवापेतम, मतलब जीव को छोड़ करके शरीर का नाश होता, जीव नहीं मरता है, फिर आपने कैसे कह दिया उपाधिक जीव का नाश होता है? तब समाधान करेंगे। तस्या सुते देहांतर प्राप्ति विषयतया नात्यांतिक नाशाभाव परकत परत्वम इत्याह। श्रुति का तात्पर्य है देहांतर की प्राप्ति में। जब हमारा शरीर छूटता है उस समय जीव का नाश नहीं होता है, केवल शरीर का नाश होता है, जीवात्मा का नाश नहीं होता है। और जीवात्मा पुनः कर्मानुसार तत्त योनियों को प्राप्त करता है, यह इसका तात्पर्य है। आत्यांतिक नाश के अभाव को नहीं बताया, मतलब बिल्कुल जीव के नाश का अभाव नहीं। जब तत्व ज्ञान होगा तो इसका भी नाश हो जाएगा जीवात्मा का, जो देहांतर संचरण करता है, यह बता रहे हैं। जीवापेतम वावकील शरीरम रियते न सह इत्यत्र न विमोक्षोर्थः किन्तु लोकांतरे गतिः। जीवापेतम वावकील शरीरम रियते नशः इत्यत्र न विमोक्षोर्थः किन्तु लोकांतरे गति। कलम भाई, गिरीश भाई के सवाल का जवाब यहां मिल गया ना? गिरीश भाई का सवाल था भाई, ठीक है सब ब्रह्म है, आत्मा कहीं मरती नहीं है, परंतु जब हम देखते हैं सुनते हैं समाचार पढ़ते, इतने लोग मारे गए हादसे में, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग भूकंप से या किसी हादसे थे, तो पीड़ा होती है। अब पीड़ा किसको होती? मन को होता है। करुणा तो होना चाहिए, शास्त्र में लिखा है आपको वहां पर करुणा की भावना करनी। सुख दुख पुण्या पुण्येषु मैत्री करुण मुदित उपेक्षा भावनतः प्रचित प्रसादनम, ये साधन बताया। सुख, कोई सुखी हो तो उससे प्रसन्न होना अच्छी बात है, सुखी आत्मा, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और कोई दुखी हो तो करुणा भाव, हे भगवान ऐसा न हो, यह दुख किसी को न आए। तो किसी पर विपत्ति आए, दुख आए, तो दुखी को देखकर अपने अंदर करुणा की भावना करना, कारुणिक भाव होना चाहिए। और पुण्यात्मा हो तो वहां पर उसको देखकर उससे मैत्री भाव करो, मैत्री दोस्ती। देखा ना, पुण्या पुण्यशु, पुण्यात्मा हो धर्मात्मा हो तो असूया दोष नहीं करना। असूया लोग करते हैं ना, मुझे पता है दिखावटी ये माला घुमा रहा है, दिखावटी गीता पाठ कर रहा, कि घर में काम न करना पड़े, पोथी लेकर चौकी लेकर सासू बैठ गए, लोग बोलते ना ऐसा, तो ऐसा असूया नहीं। असूया बोलते हैं गुण में दोष निकालना। आदमी का स्वभाव होता है किसी गुण को देखता है तो छिद्र दोष निकालता, हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि अनसूया भाव हो। तो पुण्यात्मा को देख करके प्रसन्न हो कि बहुत अच्छी बात है, भगवान कृपा करेगा तो मैं भी गीता पाठ करूंगा, सत्संग सुनूंगा, जप करूंगा, भक्ति भावन होना चाहिए, न कि वहां पर दोष दृष्टि। होता क्या है, सुखी आदमियों को देखकर ईर्षा होती, ज्वेलसी होता है ना, और दुखी को देखकर क्या होता है, इसका नसीब ही खराब है तो क्या किया जाए, ऐसा नहीं होना। पुण्यात्मा को देखकर आप उसमें दोष ढूंढते हैं, बड़ा अपने को ज्ञानी भक्ति वाला मानता है, मुझे पता कितनी भक्ति करता, वह नहीं होना। और अपुण्यात्मा हो मतलब पापी हो दुरात्मा हो, वहां क्या करना, तो उपेक्षा, उपेक्षा मतलब उदासीन भाव। जैसे आप वॉकिंग करते हैं उस समय गड्ढे कांटा कंटक पत्थर ईंट होते हैं तो आप अपने चले जाते हैं, है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समाज में भी ऐसे ही कुछ आत्मा दुरात्मा हो पापी हो तो उनके पर उनसे द्वेष नहीं करना, बल्कि उपेक्षा कर देना कि भगवान सबका भला करे। तो कोई हादसा हो जाए ना तो भगवान से प्रार्थना करना, हे परमात्मा सबकी सदगति, सबको शांति मिले, पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समष्टि पाप पुण्य से ये समष्टि हादसा होता, भूकंप आता, मौतें होती है, समष्टि पाप पुण्य भी होता है जीवात्मा का, इसलिए वहां पर कारुणिक भाव होना चाहिए, ये बताया। तो जीवा पेतम, जीवात्मा नहीं मरता है, जीवात्मा को छोड़कर जैसे आप पुराने शरीर को छोड़ देते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल नया कपड़ा आपने महीना भर पहना, वह कपड़ा क्या होता है, फट जाता है कि नहीं, अगर हटाओ ये कपड़ा भले नया है परंतु ये फट गया। ऐसे ही समझो कि किसी को मौत हो तो क्या समझना कि पुराना कपड़ा छोड़ दिया, अब कर्मानुसार नए कपड़े को प्राप्त करेगा। जीवन और मौत के अंतराल में अज्ञानी जीव ही दुखी होते, ज्ञानी दुखी नहीं होता। तो पुराना कपड़ा छोड़ना नया कपड़ा पहनने के बराबर है, देखो तो बिल्कुल ऐसा ही है। पर होता क्या है कि वर्तमान समय इतने चिपक जाते ना, वर्तमान की अवस्था से, व्यवस्था से, संसाधन से इतनी हमारी आसक्ति लगाव हो जाता है, और भविष्य पर भरोसा न होने से हम चिंतित होते हैं कि हाय मर गया, मरने के बाद क्या होगा, अच्छा सत्कर्म है तो अच्छा ही होगा। तो जीवा पेतम वावकिल शरीरम मृत्ये न स समल, जीवात्मा नहीं मरता, इत्यत्र न विमोक्षो अर्थ, विमोक्ष अर्थ नहीं है, किंतु लोकांतरे गति, लोक लोकांतर के गति को बताया है यहां पर। जीवा पेतम जीव रहितम, जीव से रहित, जीवे न त्यक्तम इति यावत, जीव को त्याग करके वा मल एव मल ही निश्चय जीवो न मृत्ये, जीवात्मा का मौत कभी होता ही नहीं। तो जीवात्मा का नाश नहीं होता है का मतलब हुआ कि तत्व ज्ञान के बिना इस उपाधि का नाश हो नहीं सकता। जब तत्व ज्ञान होगा तभी इसका बाध होगा। जिस प्रकार से जब तक आपको रस्सी में सांप दिखाई दे रहा, तभी तक भय है, कंपन है। 80 साल के बाद छोड़ो। लोग बहुत आजकल देखते हैं ना टेलीविजन में, क्या बोलते हैं, क्रिकेट मैच। पर एक बार ठीक से बुद्धि बात बैठ जाए ना कि भाई चाहे कोई हारे चाहे जीते, अपने को क्या मिलना है, फालतू समय की बर्बादी, ठीक से बैठ जाए तो दोबारा बिल्कुल रुचि होती नहीं उधर। जब तक ये बात हमारे बुद्धि में नहीं उतरती है तब तक तो बहुत रुचि होती है, देखो जरा कौन हारा कौन जीता, क्या मिलना अपने, कोई हारे चाहे जीते, अपने को कुछ मिलना है नहीं। बल्कि समय आपका बेकार चला जाता है 4-8 घंटे। ये बात ठीक से बैठ जाती है ना तो रुचि उधर होती, मैच तो होता है, चलता है सब कुछ, परंतु रुचि नहीं होती उधर, इच्छा नहीं जा, मन नहीं जाता है। ऐसे ही यदि आपको निश्चय हो जाए कि मैं तो आत्मा ही हूं, यह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि यह केवल यंत्र है, ये क्या ज्ञान क्या है ना कि हम लोग यंत्रों में बिल्कुल अपनत्व बुद्धि कर लेते हैं। ये शरीर यंत्र है, जैसे कि आपको यहां से घर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए एक व्हीकल गाड़ी साधन है चलने के लिए। अब गाड़ी में लाइट भी होती है देखने के लिए, ध्वनि के लिए आपको भी होता है मशीन बजाने के लिए, पर है तो गाड़ी यंत्र है। वो आपके जीवन यात्रा के लिए, सुविधा के लिए गाड़ी है। ऐसे शरीर भी हमारा केवल एक पारमार्थिक यात्रा के लिए एक व्हीकल गाड़ी, से अधिक नहीं। पर होता क्या है, जैसे कंजूस जो आदमी होता ना, दिन भर गाड़ी के पीछे उसको पोछाई करता, सफाई करता, मैं देखा हमारा हरिद्वार उसको नई गाड़ी को ढक के रखेगा, जरा भी धूल लेगा तो उसको स्वयं हाथ से, जैसे शरीर को नहीं झाड़ते, नए नए की बात, पुरानी की बात नहीं कर रहा हूं, संभालता है। 2000 वर्ष के बाद वो भी ध्यान हट जाता है। ऐसे हम लोग भी शरीर रूपी गाड़ी में इतने रच पच गए कि दिन रात इसी को संवारने में, सजाने में, इसी में लगे रहते। भाई चाहे कितनी बढ़िया गाड़ी हो, गाड़ी का मतलब गंतव्य तक पहुंचना, सीधी बात है, गंतव्य तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना। ऐसे ही यह जो आपका मानव शरीर है, आपके लिए भगवान ने बड़ा सुंदर एक साधन दिया है। अब आप अपने अमूल्य समय को केवल साधन को संवारने में लगाएंगे तो बताओ, ये ना समझिए कि बुद्धिमान है, ईमानदारी से बताओ, ये ना समझिए ना भाई। साधन दिया तो साधन का कर्तव्य को इससे जप करे, ध्यान करे, वेदांत का विचार करे, आत्मा अनात्मा का चिंतन करे, तब तो साधन की सार्थकता। पर आप साधन की जो है ना, जैसे वो गाड़ी की जो है ना, नई नई गाड़ी होती है तो पहले दिन क्या होता है, पूजा करते है ना, माला पहनाते, आरती करते, ठीक है, करना भी चाहिए, जरूरी है, करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में भी एक उसके अधिक मतलब की चैतन्य है, गाड़ी और जो चैतन्य है ना, उस चेतन की आपने प्रारंभ में ठीक से मुहूर्त में पूजन कर दिया, वह जो गाल अवचिन जो चेतन है वह आपकी सुरक्षा करता, ठीक से चलता, उसकी जिम्मेदारी हो जाती, भाई खूब हमारा आदर किया, सत्कार किया, पूजा किया, अपने को ठीक से रास्ता पर चलना चाहिए, यहां तक तो ठीक। परंतु उसी को सब कुछ मान लिया तो ये ना समझिए, वही यहां ना समझिए बता रहे कि भाई इस जीवात्मा का अस्तित्व केवल तत्व ज्ञान के पहले पहले है। तत्व ज्ञान होने के बाद इस जीवात्मा मतलब औपाधिक चिदाभास का बाद हो जाता है और आप अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक तो लिखा, जीव को छोड़कर शरीर का नाश होता है, जब आदमी मरता है ना तो इस 5 भौतिक शरीर का नाश होता है, जीवात्मा का नहीं। ये तात्पर्य है, जीवात्मा का अर्थ चिदाभास, मतलब सूक्ष्म शरीर जो उपाधि है उस सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता है, जो पांच ज्ञान इंद्रिया हैं, पांच कर्म इंद्रिया, पंच प्राणी का नाश नहीं होता है। तो जो आज आपने प्रेम पूरी में सत्संग सुन लिया है ना, या जो जप कर लिया है, ध्यान कर लिया, सत्कर्म कर लिया, दान पुण्य, तो वह जो सूक्ष्म शरीर है वह भी आपके साथ रहता है। उसका नाश तत्व ज्ञान से केवल होगा। इसलिए ज्ञान की महिमा है भाई, जन्म जन्मांतर में भी आपकी यही इंद्रियां, अंतःकरण, बुद्धि सब साथ साथ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे आज आपने मान लीजिए जो है कुछ अध्ययन किया, चिंतन किया, फिर कल आप उसके आगे बढ़ते, परसों और आगे पढ़ते हैं ना, ऐसे जन्म जन्मांतर का जो साधना है उसी साधनाओं को लेकर फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसी बात को गीता में कहा ना, ये पूर्वाभ्यास न तेनैव ह्रियते य वसो विष। पूर्वाभ्यास से साधक आगे से आगे बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, अनेक जन्म संसिद्धिश ततो याति पराम गति। तो आपका विधान श्रवण कभी न कभी आपको वहां तक जरूर पहुंचा देगा। ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।